जय राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा राधा माधव कुंज बिहारे, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारे, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारि, यमुना तीरा यमुना तीरावन चारि, राधा माधव कुंज बिहारे, जय राधा माधव कुंज बिहारे, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारे, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावन चारि, यमुना यमुना तीरावन चारि, राधा माधव कुंज बिहारे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा चिल प्रभु पदा
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरषद श्री श्रीमद्भयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन विविधि फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरषद श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय उपस्थित भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भागवत सार की श्रृंखला में पांचवें स्कंद के दसवें अध्याय पर आज चर्चा है, जिसका शीर्षक है जड़ भरत तथा महाराज रहुगण की वार्ता। इसके 11वें श्लोक को पढ़ेंगे, कृपया दोहराइए। जीवन मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवद्वे कृतस्य दृष्टम् स्वस्वाम्यभावो ध्रुवैर्य यत्र तर्हाच्यते सो विधिकृत्य योगः जीवन मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवद्वे कृतस्य दृष्टम् स्वस्वाम्यभावो ध्रुवैर्य यत्र तरुच्यते सो विधिकृत्य योगः। जीवन मृतत्वं नियमेन राजन् आद्यन्तवद्वे कृतस्य दृष्टम् स्वस्वाम्यभावो ध्रुवैर्य यत्र तर्युच्यते सविधिकृत्य योगः जीवन मृतत्वम जीवित रहकर भी मृत होने का गुण नियमेन प्रकृति के नियमों द्वारा राजन हे राजा आदि अंतवत प्रत्येक पदार्थ का आदि और अंत होता है यह क्योंकि विकृतस्य विकारी वस्तु का यथा शरीर का दृष्टम देखी जाती है स्वस्वाम्य भाव सेवक तथा स्वामी का भाव ध्रुव अपरिवर्तनीय ईड्य हे पूज्य यत्र जहां तरही तभी उच्यते यह कहा जाता है असौ वह विधिकृत्य योगः आज्ञा तथा कर्तव्य का संयोग। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे राजन आपने वृथा ही मुझ पर जीवित होने पर भी मृत तुल्य होने का आरोप लगाया है। इस भौतिक संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ऐसा सर्वत्र है क्योंकि प्रत्येक भौतिक वस्तु का अपना आदि तथा अंत होता है। आपका यह सोचना कि मैं राजा तथा स्वामी हूँ और इस प्रकार आप द्वारा मुझे आज्ञा दिया जाना भी ठीक नहीं है क्योंकि ये पद अस्थाई हैं। आज आप राजा हैं और मैं आपका दास हूँ किंतु कल स्थिति बदल सकती है और आप मेरे दास हो सकते हैं मैं आपका स्वामी। ये नियति द्वारा उत्पन्न अस्थाई परिस्थितियाँ हैं। तात्पर्य इस संसार में देहात्म बुद्धि ही सारे कष्टों का मूल कारण है। विशेष रूप से कलयुग में लोग इतने अशिक्षित हैं कि उनकी समझ में यह भी नहीं आता कि यह शरीर प्रत्येक क्षण बदल रहा है और अंतिम परिवर्तन ही मृत्यु कहलाता है। जो इस जन्म में राजा है वही कर्मवश अगले जीवन में कुत्ता बन सकता है। आत्मा तो प्रकृति की शक्ति से उत्पन्न गहरी निद्रा में मग्न रहता है। वह एक प्रकार की अवस्था से दूसरे प्रकार की अवस्था में रख दिया जाता है। बिना आत्म साक्षात्कार तथा ज्ञान के बद्ध जीवन चलता रहता है और मनुष्य अपने को झूठे ही राजा दास कुत्ता या बिल्ली कहलाने का दावा करता है। ये परम व्यवस्था द्वारा लाए जाने वाले विभिन्न रूपांतर हैं। मनुष्य को इन अस्थाई देहात्म बुद्धि की कल्पनाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। वस्तुतः इस संसार में कोई भी स्वामी नहीं है। क्योंकि प्रत्येक प्राणी प्रकृति के नियंत्रण में है और स्वयं प्रकृति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अधीन है। अतः भगवान श्री कृष्ण ही परम स्वामी हैं। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, एकेले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र स्वामी तो श्री कृष्ण हैं और अन्य सब उनके दास हैं। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूलने के कारण ही संसार के सारे कष्ट उत्पन्न होते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस अध्याय पर चर्चा से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को दोहराएंगे। सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णावरिवर्तिता। परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मदेकबन्धो मत्सङ्गी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधु तदायीन अतिनीचोचतः कर हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। हरे कृष्ण। तो भरत महाराज की कथा जारी है। कैसे भरत महाराज ने अगला जन्म एक हिरण के रूप में लिया और फिर हिरण के रूप में जन्म लेकर भगवान के भक्तों के संग में रहे और फिर अपना देह त्याग कर जड़ भरत के रूप में उन्होंने जन्म लिया। जड़ भरत कैसे रहते थे, क्या कार्य करते थे इत्यादि इसको हम सुन चुके हैं। और फिर एक समय कुछ डकैतों ने उनको मारने का प्रयास किया, उनकी बलि चढ़ाने का प्रयास किया और स्वयं काली देवी ने उनकी रक्षा की, अपने ही उपासकों को मार दिया। अब इसके आगे का वर्णन इस अध्याय में दिया गया है जड़ भरत और महाराज रहुगण की वार्ता। सुखदेव गोस्वामी आगे कहते हैं कि जब ऐसा हो गया तो उसके बाद एक समय एक राजा थे रघुगण। वैसे तो बड़े धार्मिक राजा थे। एक समय पालखी में जाना था, पालखी उठाने वालों में एक आदमी कम था, तो वे लोग ढूंढ रहे थे, ढूंढने गए और फिर उन्हें ये जड़ भरत दिखाई दिए। तो पहले करीब 8 श्लोकों में जड़ भरत की नम्रता और उनकी करुणा का वर्णन किया गया है कि कैसे वो नम्र थे और कैसी करुणा उनके हृदय में थी भगवान की भक्ति के कारण। तो जड़ भरत को उन्होंने देखा और उनको उठाकर ले गए कि चलो तुम्हें राजा की पालकी उठानी है। और जड़ भरत ने कोई विरोध नहीं किया। ऐसा नहीं था कि जड़ भरत कोई कार्य ढूंढ रहे थे, काम नहीं था, उनको काम मिल गया। वैसे तो जड़ भरत एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं वो योग्य नहीं थे पालकी उठाने के लिए, लेकिन फिर भी उनको जबरदस्ती उसके लिए ले जाया गया और उन्होंने कोई विरोध नहीं किया कि ठीक है चल दिए। ये उनकी नम्रता है। दरअसल इस अध्याय में जड़ भरत के चरित्र से वैष्णवों के गुणों को प्रकट किया जा रहा है, कैसे वैष्णवों के अंदर गुण होने चाहिए। तो पहली चीज नम्रता, ये वैष्णवों के लिए बहुत आवश्यक है। नम्रता ये बाहरी दिखावा नहीं है। नम्रता का अर्थ होता है ज्ञान जनित नम्रता। ज्ञान जनित नम्रता अर्थात जब हमें ज्ञान हो जाए उसके आधार पर हम नम्र बने। बाहरी दिखावा, अपने आप को एक बहुत अच्छा व्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए नम्र होना, हृदय में दूसरों के प्रति द्वेष और घृणा होना, लेकिन बाहरी दृष्टि से बहुत नम्र स्वभाव को दर्शाना, ये सच्ची नम्रता नहीं है। सच्ची नम्रता होती है जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं। सच्ची नम्रता होती है उस ज्ञान का साक्षात्कार जब हम करते हैं और उस आधार पर हम अपना जीवन जीते हैं, वो सच्ची नम्रता है। सच्ची नम्रता है अपने आप को भगवान का दास मानना, भगवान के भक्तों का दास मानना, ये सच्ची नम्रता है और उस आधार पर कार्य करना। तो जड़ भरत चल दिए और उस समय जब उनको पालकी उठाने के लिए लगाया गया तो जड़ भरत चलते हुए आगे तक देखते थे और अगर 2-3 फुट आगे भी कोई चींटी भी होती थी तो वो उस पर पांव नहीं रखते थे, बड़े ध्यान से चलते थे। हालांकि कष्ट में थे, कष्ट में अर्थात उनको पालकी उठानी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी इन नियमों को भूले नहीं कि चलते समय मैं कहीं किसी प्राणी का वध नहीं कर दूं, प्राणी को मार नहीं दूं। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि वैष्णव हर अवस्था में अपने नियमों को त्यागता नहीं है भक्ति के, फिर वो चाहे कष्ट में ही क्यों ना हो। जब हम लोग बहुत आनंद में होते हैं तब तो ठीक है, भक्ति कर लेते हैं, कीर्तन करना इत्यादि बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब कष्ट में हो तब भी हम अपने भक्ति के नियमों को नहीं त्यागे, वो वैष्णव। अर्थात हर अवस्था में भगवान की कृपा को देखना, हर अवस्था में अपने भक्ति के नियमों का पालन करना। तो इसीलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि हालांकि जड़ भरत ऐसी अवस्था में थे लेकिन नियमों को भूले नहीं, इसलिए एक वैष्णव कभी भी नियमों को नहीं भूलते, जिस अवस्था में भी हैं भक्ति के नियमों का वो पालन करते हैं। साथ ही साथ द्वेष नहीं करते और सभी जीवों के प्रति वो सुहृद भाव रखते हैं। तो वैष्णवों के कुछ लक्षण यहाँ दिए गए। पहला लक्षण हम लोग देखते हैं नम्रता, दूसरा कि वैष्णव कभी भी अपने भक्ति के नियमों को त्यागते नहीं हैं, दुख में या सुख में। तीसरा लक्षण देखते हैं कि उन्हें कोई द्वेष नहीं होता। जैसे जब रहुगण की पालकी उठाने के लिए भरत को कहा गया जड़ भरत, तो उन्हें कोई द्वेष नहीं हुआ, और साथ ही साथ वो सभी जीवों के अर्थात चलते हुए फिर भी देख रहे थे कि कहीं चींटी को नहीं मार दूं, तो सभी जीवों के हितैषी होते हैं, और इसका कारण उनके हृदय में भगवान का वास होता है। वैष्णवों को धाम भी कहा जाता है। एक धाम होता है जहां भगवान वास करते हैं, लीलाएं करते हैं, जिसे हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं, और दूसरे धाम होते हैं भगवान के भक्त। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानी, दूसरे धाम कहलाते भगवान के भक्त, उनको भी धाम कहा जाता है, क्योंकि उनके हृदय में भगवान का वास होता है। तो जिस स्थान पर भगवान निवास करते हैं उसे धाम कहते हैं, इसीलिए वैष्णवों को भी धाम कहा जाता है। तो ये कारण है कि वैष्णव भगवान की उपस्थिति के कारण इन लक्षणों को प्रकट करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि इन गुणों के कारण भगवान को आकृष्ट करते हैं, भगवान बाध्य हो जाते हैं उनके हृदय में वास करने के लिए उनकी भक्ति के कारण। तो ऐसे जड़ भरत चलने लगे, तो जब चलते, क्योंकि वो बार बार चींटियों को ध्यान दे रहे थे, तो रहुगण की जो पालकी थी बार बार टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी, क्योंकि बाकी सब तो ठीक से चल रहे थे, वो कुछ देख नहीं रहे थे, लेकिन ये कहीं इधर पांव रखते, कभी उधर रखते, कहीं इसको नहीं मारना इत्यादि। तो राजा रहुगण बड़े क्रोध में आ गए, और उन्होंने पूछा कि ये कैसे आप लोग पालकी उठा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो उस समय जो अन्य सेवक थे वो बड़े घबरा गए, और उन्होंने सोचा कि अब तो राजा दंड देंगे। तो तुरंत उन्होंने कहा कि महाराज, ये जो नया व्यक्ति आया है ये ठीक से नहीं चल रहा, हम सब तो ठीक से चल रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो बाकी लोग थे वो भक्त नहीं थे, और इसीलिए तुरंत दूसरों पर आरोप लगाने के लिए तैयार थे। तो जब राजा ने ये देखा कि ये फिर से ठीक नहीं, तो राजा ने कहा ठीक से चला, लेकिन फिर वही जड़ भरत ऐसे ही चल रहे थे। तो राजा रहुगण बहुत क्रोधित हो गए, और उन्होंने जड़ भरत को कहना प्रारंभ किया। वो कहना तो चाहते थे कि क्यों ठीक से नहीं चल रहे हो, लेकिन उन्होंने एक अलग तरीके से उनको प्रस्तुत किया, सीधे नहीं कहा। तो उनको कहने लगे कि हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत थक गए हो, तुम्हारे शरीर में बल भी नहीं है, तुम बूढ़े हो गए हो। वो तो कोई बूढ़े नहीं थे, वो तो युवक थे, और बहुत हट्टा कट्टा शरीर था, और ना ही थके थे। लेकिन राजा इस तरह से कहने लगे कि आप बहुत बूढ़े हो गए हो और बहुत थक गए हो, आपके अंदर शक्ति नहीं रही है, शायद इसीलिए आप नहीं चला रहे, ठीक से चल नहीं पा रहे। तो ऐसे वो कहने लगे, तो क्रोध में थे, तो क्रोध को प्रकट करने लगे, और फिर उन्होंने कहा कि ठीक से चलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दे दूंगा। तो उस समय जड़ भरत ने सोचा कि अब थोड़ा ज्ञान देना चाहिए महाराज रहुगण को। तो फिर उस समय उन्होंने उत्तर देना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया कि महाराज रहुगण से कि आप जो कह रहे हैं वो सही है, ये जो शरीर है ये ना तो मोटा है ना पतला है ना बूढ़ा है, ये जो मैं हूं, ना मैं मोटा हूं ना पतला हूं, अर्थात जड़ भरत कह रहे थे कि आत्मा के लक्षण नहीं है, ये तो शरीर के लक्षण हैं। और जैसे इस श्लोक में भी वो कहते हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा कि सब कौन स्वामी है और कौन दास है। आप अपने आप को स्वामी मानते हो सकता है कि आज आप मेरे स्वामी हो, कल मैं आपका स्वामी हो जाऊं, ये तो कर्मों का नियम है, इससे हमें मिलता है ये सब। तो इसलिए आप ये जो सब कह रहे हो और फिर भी अगर आप अपने आप को स्वामी मानते हो, ठीक है, आप आदेश दो मुझे, जो आप कहोगे मैं कहने तैयार, करने तैयार हूँ। लेकिन आप दंड दे रहे हो एक ऐसे व्यक्ति को जो, क्योंकि उन्होंने कहा था तुम तो गूंगे हो, बहरे हो, सब कह दिया। तो उन्होंने कहा हाँ, जो आपने कहा सही है, मैं गूंगा हूँ, बहरा हूँ। गूंगा बहरा अर्थात उन्होंने सही क्यों माना जड़ भरत ने? ये कहने के लिए कि जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी हो जाता है तो उसे गूंगा हो जाना चाहिए। गूंगा यानी जो बोल नहीं पाता, अर्थात कोई भौतिक चीज़ों के विषय में उसको बोलना नहीं चाहिए आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को। तो उस दृष्टि से वो गूंगा है, वो बोल नहीं सकता। बहरा है किस दृष्टि से? कि उसे कोई भौतिक चीज़ों में रुचि नहीं लेनी चाहिए, केवल कृष्ण कथा को सुनना चाहिए। उस दृष्टि से उसे बहरा हो जाना चाहिए, कुछ नहीं सुन सकता। तो ऐसे जड़ भरत समझाने लगे और जब राजा रघुगण ने इसको सुना तो बड़े आश्चर्य में हो गए, क्योंकि जड़ भरत ने कहा कि आप मुझे दंड देना चाहते हैं क्यों? क्योंकि मैं तो एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति हूं, और अगर आपको लगता है कि मैं पागल हूं तो भी पागल व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि पागल को दंड देने से उसका पागलपन नहीं चला जाता। तो आप किस दृष्टि से मुझे दंड देना चाहते हैं? और ऐसे कहकर जड़ भरत पालकी उठाकर फिर से चलने लगे, रुके नहीं, क्योंकि जड़ भरत ने सोचा कि शायद इसके द्वारा मेरे कर्म कट रहे हैं, ये कष्ट के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ऐसा कहते हैं, मेरे प्रारब्ध समाप्त हो रहा, तो ठीक है, मुझे कर लेना चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण गुण भक्तों का, कि उनको मानना चाहिए कि जो भी जीवन में हो रहा है अच्छा हो रहा है। इस जगत में हर जीव अज्ञान में है, अपने आप को शरीर माने हुए है, और इस अज्ञान से दूर जाने का मार्ग जड़ भरत इस अध्याय में देते हैं। कैसे व्यक्ति दूर जा सकता है इस मोह से, इस बहुत बड़े बंधन से कि मैं शरीर हूं? सबसे पहली चीज, हमें स्वीकार करना चाहिए भगवान की अधीनता को। हमारे इस जगत में बने रहने का कारण यही है कि हम अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे हैं भगवान की। हम अपने आप को भगवान मान रहे हैं, अपने आप को ही कर्ता मानते हैं। तो सबसे पहले हमें भगवान से नियंत्रित होने के लिए स्वीकार करना चाहिए कि मैं तैयार हूं भगवान से नियंत्रित होने के लिए। अभी हम नियंत्रित हैं अपनी इच्छाओं से, अभी हम नियंत्रित हैं अपने अपने गुणों से, अभी हम नियंत्रित हैं अपने कर्मों से। इसीलिए हमें ये सोचना चाहिए कि अब मैं भगवान के द्वारा नियंत्रित होने के लिए तैयार हूं। और दूसरी चीज, पहली चीज भक्त को ये माननी चाहिए कि ठीक है, मैं नियंत्रित होने तैयार हूं, और नियंत्रित होने के लिए तैयार हैं तो कष्ट आएंगे जीवन में। तो ये कष्ट क्या है, कष्टों को कैसे देखना चाहिए? कष्टों को हमें ये देखना चाहिए कि हमें बहुत कम करके कष्ट दिए गए हैं। जैसे किसी को बहुत ज्यादा मिलने वाला था लेकिन उसको कुछ, जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पर जाते हैं, बहुत लंबी लाइन लगी है और आपको 2-3 घंटे 4 घंटे खड़ा रहना है उसमें, लेकिन कोई व्यक्ति आपको जानता है तो थोड़ा सा कम करके आपको आगे खड़ा कर देता है, एकदम बस 10 लोग बाकी हैं आगे लाइन में। तो कहाँ 2000 लोग थे और कहाँ 10 लोग बाकी हैं। तो किसी व्यक्ति को थोड़ा सा कंसेशन दे दिया गया, ठीक है आपके लिए सुविधा है, कष्ट उसको फिर भी होगा, 10 लोग खड़े हैं, उसको खड़ा होना पड़ेगा बाकी सब, लेकिन उसका कष्ट कम हो गया। इसी तरह हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें कम करके दे दिया गया है, विशेष हमारे लिए कुछ सुविधा दी गई है, कंसेशन दिया गया है, कि हमें तो बहुत कष्ट मिलना चाहिए था लेकिन सुविधा ये दी गई है मुझे भगवान की कृपा से, क्योंकि मैंने भगवान से नियंत्रित होना स्वीकार किया, सुविधा ये दी गई है कि मैं अब बहुत कम कष्ट मुझे मिलेंगे। तो एक भक्त को ये सोचना चाहिए, तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्मकृतं विपाकम्। ये जो कष्ट है ये तो कृपा है भगवान की, क्यों बहुत ज्यादा थे उसको थोड़ा सा करके भगवान ने दे दिया, अच्छा है मेरे प्रारब्ध कट रहे हैं, अच्छा है मैं अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो रहा हूं। और तीसरी चीज एक भक्त को करनी चाहिए कि सदैव श्री कृष्ण का स्मरण हृदय में करें। तो अगर ये तीन चीजें करते हैं तो अविद्या से दूर बड़ी जल्दी से जा सकते हैं, ये मोह से दूर बहुत जल्दी जा सकते हैं। भगवान से नियंत्रित होना स्वीकार करें, कष्टों को ये माने कि बहुत थोड़ा करके मेरे लिए विशेष थोड़ा करके दे दिया गया है, और तीसरा भगवान श्री कृष्ण का सदैव हृदय में स्मरण करें। तो ऐसे महाराज रहुगण को उन्होंने बतलाया कि आप, और ये कहने के बाद कि कौन स्वामी है और कौन दास है, फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आपकी इच्छा है, आप अभी भी अपने आप को स्वामी मानते हो तो ठीक है, आप मुझे आदेश दे दीजिए, मैं दास के रूप में उसको स्वीकार करूंगा, लेकिन ये सब जो है ये शाश्वत नहीं है, इसको जान लीजिए। स्वामी और दास बने रहना, अपने अपने कर्मों के नियमों के कर्मों के अनुसार व्यक्ति कभी कभी किसी शरीर में होता है, कभी किसी शरीर में, इसीलिए राजा होना भी जरूरी नहीं है कि आप हमेशा राजा रहोगे। तो ऐसा जब कहा तो क्योंकि महाराज रहुगण धार्मिक व्यक्ति थे और बहुत रुचि रखते थे आत्म साक्षात्कार में, उन्होंने जब ये सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कौन व्यक्ति है जो ऐसी बातें कर रहा है। तुरंत उतर गए पालकी से, दंडवत प्रणाम किया उन्होंने जड़ भरत को, और उन्होंने पूछा आप हैं कौन, आप कोई साधु हैं, कोई आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, कोई भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान हैं, कौन हैं आप? ये जो आप बातें कह रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। तो महाराज रहुगण उन्होंने समर्पण किया और पूछने लगे कि आप बताइए कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या आप यहां पर केवल मेरा उद्धार करने के लिए आए हैं, और ये जो सब बातें आप कह रहे हैं इनमें मुझे बड़ी रुचि है। और कहते कहते वो कहने लगे कि जब वो बोल कह रहे थे कि आप कौन हैं इत्यादि, फिर उन्होंने कहा एक बहुत सुंदर बात कि उन्हें भय हो गया हृदय में। किस चीज का भय हो गया कि कहीं मैंने अपराध तो नहीं कर दिया इनके प्रति, कहीं ये वैष्णव तो नहीं है। और उस समय महाराज रहुगण बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं इंद्र के वज्र से नहीं डरता, मैं शिवजी से भी नहीं डरता, अगर शिवजी कुछ शिवजी आकर कष्ट दे मैं नहीं डरता, मैं यम के दंड से नहीं डरता, अगर यमराज मुझे कोई दंड देना चाहते हैं उससे भी मैं नहीं घबराता, मैं अग्नि सूर्य चंद्रमा किसी से नहीं घबराता, लेकिन मैं एक चीज से बहुत घबराता हूं और वो है वैष्णव अपराध। तो इसीलिए शायद आप वैष्णव हैं और मैंने आपके प्रति बहुत अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कीजिए। तो यहां महाराज रहुगण इस बात को स्थापित करते हैं कि कितना खतरनाक है वैष्णव अपराध। वो कहते हैं कोई देवता मुझे दंड दे कोई चिंता नहीं है, लेकिन वैष्णव अपराध मुझसे ना हो जाए बस इसकी चिंता मुझे, मैं इस चिंता में रहना चाहता हूं, इसलिए हमेशा सावधान रहे, मैं उससे डरता हूं। महाराज रहुगण कहते हैं वैष्णवों के प्रति अपराध करने से डरता। चैतन्य चरितमृत में वैष्णव अपराध का वर्णन करते हुए उसको पागल हाथी का या तुलना की गई है। मान लीजिए आप कई वर्ष लगाकर बगीचा बनाते हैं, बड़ा सुंदर बगीचा, और उसमें एक पागल हाथी को छोड़ देते हैं, कुछ ही क्षण में समाप्त। और ये वैष्णव अपराध ऐसे हैं कि भगवान इन्हें कभी क्षमा नहीं करते, और चाहे वो व्यक्ति कोई क्यों ना हो, स्वयं भगवान की माता शची देवी जब उन्होंने अपराध कर दिया अद्वैताचार्य के प्रति, चैतन्य महाप्रभु ने क्षमा नहीं की। सारे भक्तों ने याचना की कि महाप्रभु शची माता आपकी माता है, आपको क्षमा करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं, इन्होंने वैष्णव के प्रति अपराध किया है और एक ही उपाय है, इनको उनकी चरण धूलि लेनी। जब भक्तों ने जाकर अद्वैत आचार्य को बताया कि आपको उनको चरण धूलि देनी है, तो अद्वैत आचार्य मूर्छित हो गए कि शची माता के मस्तक पर मेरी चरण धूलि लगेगी। और जैसे ही वो मूर्छित हुए, शची माता ने उनके चरण उनकी धूलि अपने सर पर लगा दी। और ये देखकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा अब ठीक है, अब इन्हें कृष्ण प्रेम में लेगा। तो देखिए, अपनी माँ को भी चैतन्य महाप्रभु ने यह दर्शाया कि भले वो भगवान की माता है, लेकिन अगर वैष्णव अपराध करती हैं तो क्षमा नहीं किया जा सकता। अपनी ही माता क्यों, अपने जितने सगे संबंधी हैं। जब श्री कृष्ण इस पृथ्वी से जाने वाले थे, तो उन्होंने एक लीला की, मौसल लीला, उस लीला में उन्होंने अपने सारे संबंधियों को, सारे वंश को समाप्त कर दिया, आपस में लड़कर मर गए। लेकिन इसका कारण था वैष्णव अपराध। वे लोग गए ब्राह्मणों के पास, ऋषि मुनियों के पास, नारद आदि ऋषि सब खड़े हैं, और उनसे हंसी मजाक कर दिया, अपराध कर दिया उनके प्रति। क्या अपराध कर दिया? उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ ये एक स्त्री है, वो स्त्री नहीं थे, पुरुष थे, उसको साड़ी वाड़ी पहना के मुंह का ढक दिया और उसके पेट में कुछ थोड़ा सा कपड़ा ऐसे बांध कर रख दिया जैसे मानो वो गर्भवती हो, और उसको ले गए। और आप लोग तो सब साक्षात्कारी पुरुष हैं, आप त्रिकालज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, बताइए इसके लड़का होगा या लड़की, इसके गर्भ में लड़का है या लड़की। तो जब ऐसा अपमान किया, तो वहां ऋषि मुनि बड़े क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दिया कि मूर्ख, इसके गर्भ से अब जो इसके जो दिखा रहे थे कि ये इससे जो निकलेगा ये तुम्हारे सारे वंश का नाश करेगा। और अचानक ये लोग घबरा गए ऐसे श्राप सुनकर, कपड़ा हटाया तो देखा एक लोहे का टुकड़ा था, और वही लोहे का टुकड़ा आगे चलकर सारे यदुवंश को समाप्त करने का कारण बना। तो इसीलिए ये वैष्णव अपराध बहुत ही खतरनाक है। भगवान ना तो अपनी माता को छोड़ते हैं, ना अपने संबंधियों को। जिन्होंने भी वैष्णव अपराध किया, दंड निश्चित मिलता है। तो इसीलिए हमें बहुत संभालना चाहिए। तो महाराज रघुगण कहने लगे, बस मैं उससे डरता हूँ, कृपया आप बताइए कौन है। और फिर उन्होंने प्रश्न पूछने प्रारंभ किए कि आप कह रहे हैं कि ये जो राजा या स्वामी और दास ये शाश्वत नहीं है, या शरीर को फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं कि मैं ना तो मोटा हूं ना पतला हूं इत्यादि, लेकिन वो कहते हैं कि जब कष्ट होता है तो दुख तो होता है हमें, फिर दुख क्यों होता है? उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पात्र में आप पानी और पानी या चावल रखकर उसको गर्म करें, तो पात्र गर्म हो रहा है, चावल और पानी गर्म नहीं हो रहा सीधे, लेकिन फिर भी जब पात्र गर्म होता है तो पानी भी उबलने लगता है और चावल भी उबल जाता है। तो इसी तरह जब शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा को भी कष्ट होता है। आपने ये कैसे कहा कि आत्मा को कष्ट नहीं होता? आत्मा को तो कष्ट होता है। और फिर आपने कहा कि राजा स्वामी इत्यादि ये सब केवल पदवियां हैं, तो उन्होंने कहा कृपया बताइए अगर कोई राजा है तो क्या उसका कर्तव्य नहीं है दंड देना? अगर उसके राज्य में कोई गलत कार्य कर रहा है तो क्या उसका कर्तव्य नहीं है दंड देना? स्वामी कैसा वो? तो ऐसी सब प्रश्न उन्होंने किए कि ये मुझे बताइए कि ये कैसे संभव है कि ये आप कह रहे हो कि मैं स्वामी हूं नहीं हूं, मैं दास नहीं हूं, ये बदल जाते हैं इत्यादि, लेकिन हमें तो कष्ट होता है। जब शरीर को कष्ट होता है तो आत्मा भी कष्ट सहती, तो इन चीजों को कृपया आप स्पष्ट कीजिए। तो ऐसे वो ये प्रश्न करते हैं, और अगले अध्याय में जड़ भरत शिक्षा देंगे महाराज रघुगण को, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस अध्याय के अंतिम तात्पर्य में प्रभुपाद वैष्णव अपराध के प्रति, वैष्णव निंदा के प्रति कुछ लिखते हैं, तो इसको पढ़कर समाप्त करेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य, महाराज रघुगण अत्यंत बुद्धिमान थे और वैष्णव के प्रति किए गए अपराध के अशुभ फलों से भली भांति परिचित थे, अतः वे जड़ भरत द्वारा क्षमा किए जाने के लिए अत्यंत व्यग्र थे। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए महाराज रघुगण के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए वैष्णव के चरण कमल पर अपराध न करें। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में कहते हैं, शूल पाणी समयदि भक्त निंदा करे भागवत प्रमाण तथापि शीघ्र मरे। हेन वैष्णवेर निंदा सर्वज्ञ हय से जनेर अधपात सर्वशास्त्र कय। यदि कोई वैष्णव की निंदा करता है तो वह त्रिशूलधारी शिवजी के समान शक्तिशाली होने पर भी अपने आत्मपद से गिर जाएगा, यह समस्त वैदिक शास्त्रों का निर्णय है। उन्होंने चैतन्य भागवत में यह भी कहा है, वैष्णवेर निंदा करी बेक जर गण तार रक्षा सामर्थ्य नाहिक कोन जन। शूलपाणी समय यदि वैष्णवेर निंदे तथापि नाश जाए कोहे शास्त्र वृंदे। इह न मानिया जय श्री जन निंदा करे जन्मे जन्मे से पापिष्ट दैव दोषे मरे। जो वैष्णव की निंदा करता है उसे कोई नहीं बचा सकता, चाहे वह शिवजी के समान बलशाली क्यों ना हो। यदि वह वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश होना ही है, यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो उसका विनाश निश्चित है, यही समस्त शास्त्रों का निर्णय है। यदि कोई शास्त्रों के निर्णय की अवहेलना करके वैष्णव की निंदा करता है तो इसके कारण वह जन्म जन्मांतर तक कष्ट भोगता है। हरे कृष्णा। तो अगले अध्याय में इनके प्रश्नों का उत्तर जड़ भरत देंगे, उनकी शिक्षाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई टीका टिप्पणी? चेक द माइक, व्हाई यू वेस्टिंग टाइम। आप ऐसे ही पूछो। From the example of Maharaj Raghugan, we see that even though being on a highly elevated position, still why they commit offenses, right? Well, when we read the Shastras and in the scriptures, when we read about elevated devotees committing offenses, that is just instruction to instruct us through the devotees. Krishna puts them into that. That is one part when we hear in the Shastra, Shiva committing or anyone like that. Like here is it, even if he is Shiva, he'll have to follow. So anyone committing, Shachi Mata, she committed and all, etc. So that is, Krishna uses his devotees to give us instructions. That is one part. So it's not that they being on the elevated position, they commit Vaishnava offense, but Krishna uses them to give us, like, you know, sometimes the tragedies are to caution others, like this Titanic, you know. So, you know, in the first voyage only, drowned completely. So it's a warning to all others that how they should be careful. So similarly, these incidents, they serve as warning to others. So we should not think that these elevated devotees, how can they commit, like Maharaj Raghugan. So we will see, we see that how elevated he is, but this is just to give the instruction. And in the practical life, this is from the Shastras, sometimes we see that amongst the devotees who are highly knowledgeable and all, still they commit offense towards Vaishnava. So what is that? Having knowledge and realizing knowledge are two different things. One can have the knowledge, but then he may not have realized it fully. Or when you are on the path of purifying your mind, your consciousness, it's not necessary that as soon as you start or as soon you are on the path, you are away from the effects of modes of material nature. They still act upon a person who is not fully realized, completely realized. They still act upon it. So that's one reason why we find that even those who are in knowledge, they are in knowledge and they are on the path of perfection, but they have not achieved perfection, hence they are troubled or they are affected by the modes of material nature, passion, ignorance and goodness, and that is why we see the display of such manifestation. But that is temporary, because sometimes a devotee may display anger or something, but within the heart he always laments, why did I do? So because he's not able to control his nature or whatever due to the effect of the modes, he has done it, but it is not like others who do it and they don't even bother. So those who are not in devotion, they don't even think that I did something wrong or like that. So that's how one we have to understand, that when these devotees they do, so they are on that level where they have knowledge but they are still affected by the modes of material nature. So that is why we are all struggling. All the devotees here who are in this material world, they are all struggling. So we should understand that yes, in our struggle someone is on a lower stage, someone on the higher stage, but even those on the higher stage are struggling. And the third reason which is given by Prabhupada in the pastime of four Kumaras, cursing Jay and Vijay, he says that even in liberated stage there is anger. Anger is there even in liberated stage. But there is a difference between that anger and the anger in the conditioned stage. And what is the difference? The difference is that a liberated soul get angry when his service to Krishna is obstructed. That time, like four Kumaras, they were about to serve Krishna, going there, glorifying, etc. But it was obstructed. So when the service is obstructed, he gets angry, not on a personal level. So that also is another manifestation. Sometimes we see devotees getting angry, but then it may be due to their obstruction in the service, may not be due to modes. So it could be anything. It could be due to modes because he is not completely purified. It could be he may be liberated but due to obstruction in service, and it could be Krishna is using them to warn us. So that's how we see it. Right? Aur koi prashna hai kisi ka? Yes. Bhakti karte hue अगर हमारे से अपराध हो जाएं, जानते हुए या अनजाने में, तो क्या करना चाहिए? गलतियां और अपराध को दो श्रेणियों में रखना चाहिए. गलतियां जैसे हम लोग कभी भगवान की सेवा में गलती हो जाती है हमसे इत्यादि, तो उसको गलतियां मानते हैं, उसको सेवा अपराध कहा गया. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो भगवान के नाम लेने से ठीक हो जाते हैं. हरि स्थाने अपराध है तारे हरि नाम. तो अगर भगवान के प्रति कुछ अपराध इत्यादि हो जाते हैं तो भगवान संतुष्ट हो जाते हैं अगर हम अच्छी तरह हरि नाम ले लें. लेकिन अगर वो श्रेणी वैष्णव अपराध की है तो फिर वो खतरनाक है. तुमस्थाने अपराध है ना ही परित्राण. तो अगर हमसे कोई जाने अनजाने में अपराध हो भी गए हैं किसी वैष्णव के प्रति, हमें क्षमा याचना करनी चाहिए. दो ही चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अगर हमने वैष्णव के प्रति अपराध किया है तो. पहला, हम उनसे क्षमा याचना करें, और दूसरा, उनको बताए बिना उनकी सेवा करें. अगर ये दो चीज़ें हम करते हैं तो उनकी सेवा में लगने से हमारे हृदय में जो उनके प्रति गलत भावना आई थी वो चली जाती है और क्षमा याचना करने से हमारा अहंकार टूटता है। तो इसलिए क्षमा याचना करनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी के? ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंद।
Check it, no? Why didn't you check it before starting the class? Every day you do it and then you should check it just before the class on it, go there and see whether it is working or not working.